मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मुझे एक सूचना से अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर की शुरुआत करने की इजाज़त दें, और सूचना यह है कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 7 से 21 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं। इसके लिए बकायदे रजिस्ट्रेशन जारी हैं, और अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उसके तहत हमने कुछ डिस्काउंटेड सीट रखी हुई थी जिसपे स्टूडेंट को 2000 रुपये की छूट मिलती थी। हालांकि वो डिस्काउंटेड सीट खत्म हो गई हैं, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं, स्टूडेंट्स के हित में इसे कुछ दिनों के लिए और बढ़ा देना चाहिए। तो दोस्तों, जो इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो डिस्काउंटेड सीट के लिए जो डेट थी वह बढ़ा दी गई है, और बढ़ाकर यह कर दी गई है 10 अगस्त। यानी कि अगर आप 10 अगस्त तक एडमिशन लेते हैं तो आपको 2000 रुपये की छूट मिलेगी। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे जो प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकार हैं उसके संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उस पर बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले जो दूसरी खबरें हैं आइए उन पर थोड़ी सी एक नज़र मार लेते हैं। मैं कहता हूं एक नज़र मार लेते हैं, आप तो नज़र नहीं मारेंगे, आप एक बार उन्हें थोड़ा सा सुन लेते हैं, इस रूप में ले। अखबारों में आपने पढ़ा होगा गांधी नगर को लेकर के खबर आई थी। गांधी नगर कहाँ है आप जानते हैं, अहमदाबाद के पास गुजरात में है, और खासकर वहां दो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र की घटना घटित हुई है। एक जो केंद्र है उसकी आधारशिला रखी गई है, और जो दूसरा केंद्र है वह उसका लोकार्पण किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों ही मॉडर्न हमारी जो इकोनॉमी है उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिविल सर्विस के लिए ये जो घटना है, ये जो खबरें हैं आप कह लीजिए, थोड़ी सा मायने रखती हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इसकी आधारशिला रखी गई है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आधारशिला रखी गई है, यानी कि न्यू रखी गई है आप कह लीजिए, और इसके बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। और जो दूसरा है वो है इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इसका लोकार्पण किया गया है, और यह हमारा पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। देखिए, जब हम बुलियन की बात करते हैं तो एक आप कह लीजिए जो सोने चांदी से संबंधित चीजें होती हैं बुलियन के अंतर्गत आती हैं। अब यह दिया हुआ है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज का मतलब है कि जहां शेयर की खरीदी बिक्री होती है। तो अब सोना और चांदी शेयर तो नहीं है, ये मेटल है, धातु है, पदार्थ है आप कह लीजिए। तो यहां बकायदे सोने और चांदी का व्यापार होगा, और इंटरनेशनल लेवल पर होगा, जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ये जो दो सेंटर हमारे हैं इसके आधार पर आप थोड़ा सा ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब भारत अपनी जो अर्थव्यवस्था को व्यापक बनाने की लगातार कोशिश करता चला जा रहा है, कि कैसे हम सीधे सीधे अब इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ें। नो डाउट हमारे शेयर मार्केट जुड़ चुके हैं, हमारे जो दूसरे माध्यम हैं उनमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी व्यापकता आई है, और उन्हीं के कंटिन्यूएशन में आप कह लीजिए कि ये दोनों प्रयास हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट खबर जो छोटी सी थी, सभी अखबारों में इसे जगह नहीं मिली है दोस्तों, वो है कृषि जनगणना के शुरुआत की खबर। कृषि जनगणना की शुरुआत हो गई है, और ये 11वीं कृषि जनगणना होगी। देखिए, बात बहुत साफ है, कृषि जनगणना, तो कृषि के संबंध में जब जनगणना होगी तो वो क्या जनगणना में करेंगे? हालांकि ये पहले ही होनी थी लेकिन वो नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका यह भी आप अनुमान लगा सकते हैं, कोरोना के कारण सारी चीजें बढ़ाई गई हैं, तो वही इसका भी कारण रहा। और जो हमारी जो कृषि जनगणना है वो 1970-71 से लागू है, राइट? थोड़ा सा यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इस तरह के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि आप बताइए सही है या गलत है। अब आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि जब कृषि जनगणना हो रही होगी तो उसके तहत कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए होंगे, मतलब किन किन चीजों की गणना की जाएगी। अगर आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालेंगे तो मुझे लगता है कि आप अनुमान लगा लेंगे क्या क्या हो सकता है, कि कृषि के लिए कितनी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, किस किस जमीन में किस किस तरह की फसलें बोई जा रही हैं, फसलें किस तरह की हैं, यानी कि भूमि का जो उपयोग किया जा रहा है वो किस तरीके का किया जा रहा है, कितनी जमीन किस किसान के पास है। तो इस तरह के जो कृषि से जुड़े हुए जो डिफरेंट आंकड़े हैं वो लेटेस्ट हमें मिल सकेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण खबर है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंजेस के जो आक्रोश हैं, जो प्रकोप हैं, वो पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा जो मानसून भी आया है, जिस तरह से वो धोखा दे रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, तो मानसून उस तरीके का अब नहीं रह गया है जिस तरीके का पहले हुआ करता था। अगर अकाल पड़ रहा है तो ठीक है, पूरे देश में लगभग पड़ रहा है। अगर बारिश हो रही है तो पूरे देश में लगभग ठीक ही ठाक बारिश हो रही है, लेकिन उसमें अब आपको लगातार विघटन की स्थिति दिखाई दे रही होगी, और ये केवल भारत के ही संदर्भ में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ये स्थितियां बन रही हैं। खासकर जंगलों में आग लगने की घटना को लेकर के यूरोप और अमेरिका इस साल बहुत परेशान रहे हैं। थोड़ी सी बस केवल आपको सूचनात्मक जानकारी दे रहा हूं, ताकि अगर इस पर कोई क्वेश्चन आता है मेंस को लेकर के तो आप उनमें इन्हें शामिल कर सकें। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगी और बहुत भयानक आग लगी है। छोटी मोटी आग नहीं, छोटे मोटी आग तो लगती रहती है, लेकिन ये बहुत ही भयानक आग है। ग्रीस के जंगलों में आग लगी, फ्रांस के जंगलों में आग लगी, स्पेन, पुर्तगाल, इनके जंगलों में आग लगी। और इसके साथ ही साथ आप अखबारों में बाकायदे ये पढ़ रहे होंगे कि किस तरीके से जो यूरोप है, ब्रिटेन वगैरह के, तो सीधे सीधे खबर आते हैं कि वो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है, बेहाल है गर्मी के कारण। सीधी सी बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गर्मी है, और जब ये गर्मी है तो फिर जंगलों पर उसका प्रभाव दिखाई देगा ही। भारतीय संदर्भ में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि खासकर हिमालय में जो घटनाएं घटित होती हैं उस पर मैंने देखा कि पिछले कुछ सालों से मेंस में क्वेश्चन आता है। तो चूंकि इस बार भी आप देखिए कि जो केदारनाथ धाम की यात्रा हो रही थी तो किस तरीके से बादल फटे अचानक और एकदम बाढ़ सी स्थितियां बन गई और कितने तंबू बह गए, आंकड़े चाहे हमारे पास जो भी हो, लेकिन एक घटना घटित हो गई, दुर्घटना कहना चाहिए, घटित हो गई। तो इस पर भी आपकी तैयारी खासकर हिमालयन रेंज को लेकर के होनी चाहिए। और अरावली पर्वत के बारे में जो अभी वहां खुदाई चलती है और किस तरीके से उस पर संकट आ रही है, अरावली पर्वतमाला को लेकर के इस पर बकायदे अभी बातचीत हो ही रही है, कुछ कोर्ट ने भी उसमें हस्तक्षेप किया, शायद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी कोई स्टेटमेंट आया था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। और यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि मैं मेंस के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास कई मेल्स आए, वो अभी प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, मैं एक तरफा तैयारी नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो मेरी जो प्रिपरेशन की स्टाइल है वो एक कंप्लीट प्रिपरेशन है, और बीच बीच में मैं ये बताता भी रहता हूं, ये प्री की दृष्टि से, ये मेंस की दृष्टि से। तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा, मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनना होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, मैं मेंस की भी तैयारी पर उतना ही ध्यान दे रहा हूं। दोस्तों आइए अब मुख्य विषय पर थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार। पहली बात तो यह है कि प्रवर्तन निदेशालय जो हमारी एक संस्था है उस पर आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात कि अखबारों में आप देखेंगे एक शब्द मिलेगा आपको, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय को दी गई है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन रोकना, किसको रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग जो लोग करते हैं उसको रोकने संबंधी कानून है जिसको लागू करने का अधिकार दिया गया है प्रवर्तन निदेशालय को। हिंदी अखबारों में मैं देख रहा हूं कि बकायदे धन शोधन निवारण अधिनियम भी कहा जा रहा है। ये इसका आप कह लीजिए कि एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, धन शोधन निवारण। अब आप देखिए कि जो लॉन्ड्रिंग होती है मनी की, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास ब्लैक मनी है तो वो ब्लैक मनी विदेशों में भेजता है और वहां से उसको व्हाइट करके फिर अपने पास ले आता है, तो धन ब्लैक धन है, उसका शोधन कर रहा है, उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर रहा है। वो कह रहा है शोधन। शोधन क्या होता है, कोई चीज गंदी हो गई तो आप उसका शोधन करके उसको धुला हुआ बना लेते हैं, शोधन निवारण। तो ये जो धन शोधन किया जाता है इस पैटर्न पर उसको रोकने संबंधी, उसका निवारण करने संबंधी यह कानून है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज्ड नहीं होना है। तो ईडी पर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अखबारों में आपने बकायदे इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा होगा, कल मैं अगर हो सका तो उस पर कुछ बात करूंगा। कुल मिलाकर के बात इतनी कही गई है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास अभी जो अधिकार हैं वे अधिकार उसके पास रहने ही चाहिए, वो गलत अधिकार नहीं, क्योंकि याचिकाएं दाखिल की गई थी उसके कुछ आधार बनाए गए थे कि प्रवर्तन निदेशालय के पास जो अधिकार हैं वो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कुछ याचिकाएं इसलिए भी थे कि उसके पास तो पुलिस से भी ज्यादा अधिकार है, कुर्की करती है, छापा मारती है, गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस से भी ज्यादा अधिकार हैं जो उसके पास नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से अपनी अपनी बात उन्होंने रखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे उन सबको रिजेक्ट कर दिया है कि उसके पास जो अधिकार हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है वो देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है, देश की अखंडता से जुड़ा हुआ मामला है, और अगर कोई मामला गंभीर होता है तो सीधी सी बात है कि उसके रोकने के लिए भी कड़े कानून बनाए ही जाने चाहिए, सीधी सी बात है। और धीरे धीरे ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि ये जो धन होता है काला धन या इस तरीके से जो रूट किया जाता है, रूटेड किया जाता है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तस्करी में होता है, आतंकवादी घटनाओं में होता है, मादक पदार्थों के व्यापार में होता है। तो इस ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो कुल मिलाकर के यही है कि जो उसके अधिकार हैं वो इंटैक्ट हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें केवल इतनी ही है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लेंगे। हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं उसमें जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। अभय सिंह है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, अजय कुमार यादव सासाराम बिहार से, इंद्रजीत कुमार लौकही जिला मधुबनी बिहार से, हीरा लाल कुमार साहनी आपका गांव है नथुद्वार जिला समस्तीपुर बिहार, सुजीत मिश्रा रेणुकूट उत्तर प्रदेश, सतीश कुमार चौहान गांव है मऊ कुबेर जिला मऊ उत्तर प्रदेश, प्रकाश कुमार पासवान सारण बिहार से, रविंदर शुक्ला दिल्ली से, और पूनम कुमारी गांव इनका वाड़ी जिला नागपुर महाराष्ट्र से। तो अभय, अजय, इंद्रजीत, हीरालाल, सुजीत, सतीश, प्रकाश, रविंदर और पूनम, आप सभी का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में सूचना के अंतर्गत आपको बताया कि जो अब डिस्काउंटेड सीट हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए उसकी बढ़ा करके 10 अगस्त कर दी गई है, और आप 10 अगस्त तक बकायदे एडमिशन ले सकते हैं, आपको 2,000 रुपये की छूट मिलेगी। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।